على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إنه لا يحب المستكبرين. کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بار بار دہرانا پڑتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ لگی بھی ہوتی ہیں، چپٹی بھی ہوتی ہیں، اور جب تک ہم اس کے بارے میں بیان سنتے رہتے ہیں، تکرار مسلسل کانوں میں پڑتی رہتی ہے، تو وہ مرض ہمارا، گناہ کا امراض رذیلہ، وہ دبا رہتا ہے. اور اگر اس کی تکرار کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو 2-4-5 مہینے میں بھول جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ مرض سر اٹھانے لگتا ہے. تو اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ وہ ہتھوڑی سے کیل کو جو ٹھوکتے ہیں نا، کیا ایک دفعہ تو کیل نہیں میں اندر نہیں ٹھوکتے نا، بار بار اس کو چوٹ مارتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری اندر ٹھوک جاتی ہے. تو تکرار اسی لیے ہوتی ہے. تو ساتھ میں تقریباً ایک یا دو دفعہ کوشش کرتا ہوں، کچھ بیانات ایسے وہ ریپیٹ ہوتے رہے. جیسے علاج الغضب ہو گیا، غصے کا مرض باز بہت ہی بڑھتا جاتا ہے. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے، اور اس میں روز روز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جنون کا مرض، اسی طرح تکبر کا، بد نگاہی کا، فحاشی و ریانیت کا، تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ظلم کا، تو جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، ایک اللہ کی ہی کا لفظ ہے، ترجمہ یہ اللہ کی ہی بڑائی ہے زمین اور آسمانوں میں. کبریائی بڑائی، تکبر اللہ کی نہیں زمین اور آسمان میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بہت زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. تو اللہ پاک کے لیے تکبر ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دی کہ صرف تکبر صرف میرے لیے ہی ہے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ، انہو لا یحب المستکبرین، کہ اللہ پاک انہو، کہ اللہ پاک محبت نہیں رکھتے، پسند نہیں کرتے ان لوگوں سے جو متکبرین ہوتے ہیں. لا یحب، محبت نہیں کرتے. محبت کی الٹ کیا نفرت، محبت کی الٹ کیا نفرت. جن لوگوں کے اندر تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے، تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کی صفت ہے. اور احادیث مبارکہ، ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ اس موضوع کے اوپر، کیونکہ اللہ اس لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کو نفرت آتی ہے متکبرین سے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تکبر میرے لیے ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر میری چادر ہے، اللہ نے فرمایا یہ بات، تکبر بڑائی میری چادر ہے، اور جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا، ایک جگہ اس کو ہلاک کر دوں گا، کہیں یہ جہنم رسید کر دوں گا. تکبر اللہ فرما رہے ہیں میری چادر ہے، اس میں تم کیوں گھسے، میرے لیے نا یہ تو تکبر، تم کیوں متکبر بن رہے ہو، تمہیں تو نطفہ ناپاک سے پیدا ہی کیا. ہمارا کیا اللہ نے آپریشن کیا؟ قرآن پاک میں اللہ نے کھول کھول کے بتایا تو ہے کہ باپ کے نطفے سے اور ماں کے حیض سے ہماری پیدائش ہوئی ہے، اتنی غلاوت سے. اور ہم ہر وقت چاہے کتنا ہی اوپر سے نہا دھو لیں، پاک صاف رہ لیں، ہر وقت ہمارے پیٹ میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پخانا اور پیشاب بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا باطنی معاملہ. تو ہم کس بات کی اکڑ دکھائیں، کس بات کی اکڑ دکھائیں، کس بات کو لے کے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. تو یہ تکبر، سارے گناہ جو ہوتے ہیں، ساری تبکن ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تکبر ہے یہ بہت ہی بھیانک گناہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ تکبر کا مرض سب سے پہلے کائنات میں ابلیس لعین کو ہوا تھا، شیطان کو. اس نے اس کو ہی تو تکبر ہوا تھا سب سے پہلے. یعنی تکبر ایسی چیز ہے کہ اپنے رب سے بھڑ گیا، اللہ سے لڑ پڑا، اللہ کی بات نہ مانی تکبر کی وجہ سے. یہی دلیل پیش کری تھی، اللہ تو گندی مٹی سے تو بنا رہا ہے آدم کو، اور میں اس کو سجدہ کروں، اور تو نے مجھے بنایا آگ سے، اور آگ افضل ہوتی ہے، اونچا مقام رکھتی ہے، میں تو سجدہ نہیں کرتا. تو سجدہ معبودیت کا نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا، سب نے کیا تھا، فرشتوں نے کیا، تمام مخلوقات سے اللہ نے کروایا جس کو اللہ نے چاہا، لیکن واحد یہ ابلیس لعین تھا، مردود، اللہ سے بھڑائیے، اللہ سے لڑائیے. کس وجہ سے؟ کہ جی میں اعلیٰ ہوں، عرفہ ہوں، یہ کمتر ہے، پلیت ہے، گندی چیز، میں اور اس کو سجدہ کروں. तो पता चला तकब्बुर का मर सबसे पहले इबलीस को हुआ था। तो अब जिनके अंदर मुतकब्बिर होगा उनमें इबलीसियत के बहुत जरासीम है, बहुत जरासीम है। सवाल ये पैदा नहीं है कि गुनाह क्यों हुआ, खता क्यों हुई, इबलीस से गलती हुई और ऐसी गलती हुई कि आज तक अड़ा हुआ है वो, आज तक अड़ा हुआ है, कयामत तक अड़ा रहेगा, मौत तक अड़ा रहेगा, उसको कभी इस्लाह की, तौबा की या अपनी गलती पर निदामत का एहसास नहीं होगा। किताबों में मैंने पढ़ा कि एक बार ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था इबलीस, उसको अपना एहसास भी हुआ था, यार रसूलुल्लाह मैं तो दाइमी जहन्नमी लिख दिया गया हूँ, मरदूद कहलाता हूँ मैं, कोई ऐसा हल बता दें कि अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, बच जाऊंगा दाइमी जहन्नम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाए जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जाकर उनकी खबर को सजदा कर लो, उस वक्त नहीं किया तब कर ले। उन्होंने सोचा खेरा वाजी उस वक्त नहीं किया तब कैसे कर लो, उठ के चला गया। तो जिस पर मोहर लग जाती है ना, नहीं आता वो फिर क्यामत तक के नहीं है। तो जो गलत हो गए अकड़ दिखाएं और अपनी बात पे अड़े रहें, मैं ना मानू मान, मैं ना मानू, उनमें शैतानी अफरात है, शैतानी अफरात है। इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई थी, चूक हो गई थी, अल्लाह ने मना फरमाया था कि तुम दोनों इस दरख्त से मत खाना पीना, इस दरख्त का फल मत खाना, लेकिन शैतान ने उनको बरगराया, उन्होंने वो फल खा लिया, फिर एहसास हुआ, कपड़े उतर गए, अल्लाह ने नाराज होकर फरमाया मैंने मना नहीं किया था इस दरख्त के करीब ना जाना, तो फिर क्या फरमाया था, या अल्लाह रब्बना ज़लमना अन्फुसना, अल्लाह माफ फरमा दे गलती हो गई। बस इबलीस गलती पे अड़ा रहा और आदम अलैहिस्सलाम से चूक हुई, फौरन उन्होंने माफी मांगी। बस ये है आज, ये अल्लाह को पसंद है। सवाल ये नहीं गुनाह क्यों हुआ, गलत हरकत क्यों हुई, सवाल ये पैदा होता है तौबा क्यों नहीं की, माफी क्यों नहीं मांगी, और आज इनकी सारी और नियाजमंदी अल्लाह को क्यों नहीं दिखाई। तो जो अपनी गलतियों पे अड़े रहते हैं, मैं ना मानू मैं ना मानू सोच रहे हो, फिर उनका जो हेड ऑफिस कहाँ जाके मिल रहा है, और जो लोग अपनी खताओं पे रोते हैं तौबा इस्तिगफार कर लेते हैं तो उनका फिर हेड ऑफिस कहाँ जा रहा है, ये है सच्चे बनी आदम की औलाद। तो ये तकब्बुर है, ये बहुत ही खतरनाक मर्ज है, अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत फरमाए। यहाँ तक मशायत ने फरमाया पूरे दुनिया के औली अल्लाह फरमाते हैं कि औली अल्लाह बनने में तीन बड़े भूत होते हैं, वो यानी जिसकी वजह से आदमी हिजाबात होते हैं, जो अल्लाह का वली नहीं बन पाता। पहले कहलाता है हुब्बे बाह, यानी शहवत परस्ती, बदनवरी, फाशी, रियानियत, ये सारी चीजें हुब्बे बाह में आती है। दूसरी कहलाती है हुब्बे माल, हुब्बे माल, पैसा आ जाए बस, पैसा कमाए भी मना नहीं है, लेकिन इतनी तमीज होनी चाहिए, प्राइस बॉन्ड की रकम तो नहीं है, जुआ तो नहीं खेल रहा, रिश्वत सूद तो नहीं है, लेकिन लोगों को तमीज ही नहीं, वो पैसा आ जाए, किसी तरह से गया था, धोखा दे गया है, किसी को कतल कर गया, वो पैसा आ जाए। शहवत भी बुरी चीज नहीं है भाई, अल्लाह ने तकाजे रखे, शादी कर लो, नाजायज जगह आदमी इस्तेमाल ना करे। तो हुब्बे बा पहला, उसके बाद दूसरा हुब्बे माल, और तीसरा कहलाता है हुब्बे जाह, अपनी बड़ाई, तकब्बुर, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इतना क्वालिफाइड, मेरे पास फला फला डिग्रियां, या मैं बहुत पैसे वाला, मेरा ऐसा शानदार घर, मेरा ऐसे शानदार गाड़ी, या मैं इतना हसीन, या मेरी बीवी हसीन, मेरे बच्चे हसीन, मैं वीआईपी, या मेरी इतनी बड़ी पोस्ट, या मेरा इतना बड़ा मनसब, जहां जाऊं सब लोग मुझे देख के उठ के खड़े हो जाएं, वाह वाह करें, हर वक्त इस चक्कर में रहना, ये हुब्बे जाह कहलाती है, हुब्बे जाह। तो मशायख फरमाते हैं कि जब आदमी अल्लाह वाला बनने लगता है, किसी अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम कर लेता है, बैत भी हो जाता है, तो फिर एक वक्त आता है कि ये हुब्बे बाबी रुखसत हो जाती है, नाजायज शहवत परस्ती, नजरों की पाबंद भी हो जाती है, माल की भी तमीज आ जाती है, हलाल कमाने लगेगा, अगर हराम खाता तो छोड़ देगा इंशाल्लाह। लेकिन वलीउल्लाह बनने के बाद, साहिब निस्बत बनने के बाद, जैसे को कुतुब अब्दाल बन गया, वलीउल्लाह बन गया, वलीउल्लाह बनने के बाद जो आखिर में जो चीज रुखसत होती है, ये हुब्बे जाह है, हुब्बे जाह, अपनी बड़ाई, तकब्बुर, ये सबसे आखिर में निकलता है, सबसे आखिर में ये छुपा हुआ बैठा हुआ रहता है, आदमी को पता ही नहीं होता, ये साहिब निस्बत बनने के बाद निकलता है, ऐसे नहीं निकलता, ये बड़ा खतरनाक मर्ज होता है, हुब्बे बाह, हुब्बे जाह, अपनी बड़ाई, तकब्बुर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा तवाज़ु अख्तियार करता है, लिल्लाही, शर्त क्या है, अल्लाह के लिए, एक तवाज़ु अख्तियार होती है दफ्तर में, बॉस के आगे, या प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, वो जो तवाज़ु है आज की सारी, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए नहीं है, क्योंकि तो इसलिए नौकरी मेरी कायम रहे और बॉस मेरे साथ सही रहे और पैसे मुझे मिलते रहे, ठीक है, उसका बेनिफिट मिलेगा जिस चीज के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन हमारे प्यारे आकाए दो जहां सदर सुनने लिल्ला की कैद लगाइए, जो तवाजो मन तवाजा हो लिल्ला ही व रफाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए लिल्ला की शर्त है, जो अल्लाह के लिए तवाजो अख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसको इज्जत देगा, बुलंदी देगा, मर्तबे उसके बढ़ाएगा और उसको मखलूक की नजर में लोगों की नजरों में अजीम कर देगा, लोगों की नजरों में अजीम बुलंद मुकाम तक पहुंचा देगा, हर आदमी उससे मोहब्बत करेगा। ये नाम किस चीज का मिल रहा है? आज भी इंकिसारी का, लोगों की खताओं को माफ करने का, दरगुजर करने का, तवाजो अख्तियार करने के बाद ये अल्लाह पाक ये नाम अता फरमाते हैं कि लोगों की नजरों में जबरदस्त उसको बड़ा बना देंगे, अजीम बना देंगे। और जो आदमी इंसान तकब्बुर दिखाता है, अपनी बड़ाई जिसके दिल में होती है और अकड़ फूंक के साथ रहता है, स्टाइल में रहता है, तो उसके बारे में आप सल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसको पस्त करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, यानी उसको जलील करते रहेंगे, घटाते रहेंगे उसकी सारी चीजों को, यहां तक के मखलूक की नजर में सूअर और बंदे से, सूअर और बंदर से, सूअर और कुत्ते से बदतर कर देंगे, यहां तक के पफ करते करते सूअर और कुत्ते से बदतर कर देंगे उसको मखलूक की नजरों में। वो अपने तौर पर खुश हो, लोग मुझे जानते नहीं कि मैं क्या चीज हूं, भाई लोगों का दिल चीर के देखो पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं। तो अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहिए, चाहे हुसून हो, चाहे जवानी हो, चाहे कोई इल्म हो, कोई भी काबिलियत हो, समझ में आई? एक कोई इंसान बदशकल है, नऊज़ुबिल्लाह, अच्छा खूबसूरत नहीं है लेकिन आज भी तबाह हो, तो उसको अल्लाह वो इज्जत देंगे कि हर आदमी देख के उसको दीवाना हो जाएगा। ये इज्जत तो रब्बुल इज्जत के अख्तियार में, हमारे अख्तियार में नहीं, हम अपनी कोशिश से इसको हासिल नहीं कर सकते, इज्जत रब्बुल इज्जत के अख्तियार में। लेकिन ये सारी चीजें तबाह हो अल्लाह के लिए इसलिए नहीं इख्तियार करनी कि हमें इज्जत मिलेगी फिर जिल्लत मिलेगी, भाई अल्लाह के लिए करे ना, इस वजह से ना करें कि इज्जत मिले, क्योंकि बाज दफा तकब्बुर बसूरत तवाजो आता है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बाज दफा तकब्बुर जो होता है वो सूरत तवाजो में आता है, जैसे बहुत से लोग इसलिए अखलाक इख्तियार करते हैं और इसलिए ज्यादा आज भी इंकिसारी से और मोहब्बत से लोगों से मिलते हैं अखलाक के साथ, तवाजो के साथ, ताकि जवाब में लोग मेरी भी इसी तरह से ताजीम करें जिस तरह मैं इनकी ताजीम कर रहा हूँ, अखलाक से पेश आ रहा हूँ। और जिसके बाद जब उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उनका चेहरा उतर जाता है, चेहरे पे 12 बज जाते हैं, यार मैं इतनी मोहब्बत से आज भी मिल रहा हूँ तो थोड़ा मुझे लिफ्ट नहीं कराया, तो फिर वो भी फिर साइड में हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। तो पता चला कि ये अल्लाह के लिए नहीं थी तवाजो अखलाक, ये तो अपनी बड़ाई और मोहब्बत और अपनी इज्जत के लिए थी, जब वो मकसद पूरा नहीं हुआ तो आप भी वैसे हुए जैसे पहले थे, तो पता चला तो ड्रामेबाजी हो रही थी, अल्लाह नहीं था। क्योंकि अगर सच्ची इखलास होता और तवाजो लिल्ला होती तो लोगों के थानी साहब फरमाते हैं तवाजो और अदम तवाजो के ऊपर, यानी ताजीम और अदम ताजीम और अदम ताजीम के ऊपर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग इज्जत करें, मोहब्बत करें, ना करें, आप वैसी उसी तरह से रूटीन में चलते हैं, क्योंकि आपकी नजर लोगों के लिए नहीं है, लोगों पर अल्लाह के ऊपर थी आपको, आपकी नजर को तो पता चला आप बुरा मान गए और सोच ला रहे हो अल्लाह पे आसमान पे तो नजर ही नहीं थी, लोगों पे नजर थी आपकी, तो लोगों से आप बेनिफिट चाह रहे थे। तो बार दफा तवाजो जो होती है बसूरत तकब्बुर होती है, उसके पीछे कोई और नहीं है, छुपी हुई होती है। तो ये बड़ा अहम मामला है, जो सच्चे मतवाजे लोग होते हैं वो सलाम करते हैं, अखलाक से मिलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो ये नहीं देखते इसने जवाब भी दिया नहीं दिया, क्योंकि वो अल्लाह पाक हम तो तेरी नहीं कर रहे हैं, बाकी हमें कोई गाली दे, हमें इनसे क्या मतलब। ये होते हैं सच्चे लोग, अल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत वाले दिन, हाँ भाई सुन लो, सुनो बस बहुत अच्छी बात है ना, कयामत वाले दिन लोगों को चींटियों की शक्ल में कर दिया जाएगा, बैठे कयामत वाले दिन लोगों को, मुतकब्बिर लोगों को चींटियों की शक्ल में कर दिया जाएगा, बताइए आप, मुतकब्बिरीन की जमात को चींटियों की शक्ल में कर दिया जाएगा। और फिर जब इतने छोटे साइज के हो जाएंगे तो फिर होगा क्या कि लोग उनको कुचलते हुए जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा, तकलीफ होगी कुचले जाने की, लेकिन वो चीर नहीं सकते, और लोगों को क्या पता, इतनी चीज हमारे पैरों के नीचे कोई चीज है, इतनी चीज हमें क्या पता चलता है, चीखेंगे तड़पेंगे रोएंगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा उनकी फरियाद। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे उन जमात से, ये है वो तकब्बुर का इनाम जो तुम दुनिया में किया करते थे, अपनी बड़ाई तुम पेश किया करते ना, अब कुचलते हुए जाओ उनको, चींटी और ये है चींटी के साइज का, और कहीं लिखकर चींटियों की शक्ल में कर देंगे, इनको कुचलते हुए रोनते हुए लोग जाएंगे। तो दुनिया में सुअर कुत्ते से बदतर कर रहे हैं अल्लाह पाक, लोगों की नजरों में जिल्लत ही जिल्लत, और हशर वाले दिन लोग पैरों से कुचलते हुए जा रहे हैं, तो कोई अच्छी बात है ये। अब इसके ऊपर हजरत पाला रहमतुल्लाह हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफ अल्लाह हजरत अक्दस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि देखो भाई, जिस चीज की जो दुकान होती है वहां वो चीज लेने जाते हैं। सब्जी की दुकान पे कोई जाके कहता है भैया मुझे फला 2 मीटर कपड़ा दे दो, कहीं यार आप मेंटल हॉस्पिटल गए पागल है, सब्जी की दुकान पे आप कपड़ा मांग रहे हैं। तो जिस चीज की दुकान होती है वहीं पर ही जाके वो चीज मांगते हैं। तो अगर हमें इज्जत चाहिए तो इज्जत की दुकान तो नबी पाक आफद तवाज़ु इनके सारी बता रहे हैं, इज्जत की दुकान वो है, और जलील होने की जो दुकान है वो तकब्बुर है। जलील जिल्लत जहां से बढ़ती है मिलती है वो तो तकब्बुर है, तो इज्जत हासिल करते हैं तकब्बुर की दुकान जाके, जहां जिल्लत मिलती है उल्टा मामला करते हैं, और जहां इज्जत मिलेगी उस दुकान से भाग रहे, उस दुकान से भाग रहे। तो गलत एड्रेस पे नहीं जाना चाहिए, सही एड्रेस पे जाना चाहिए। लोग कहते हैं यार मैं आज भी दिखाऊंगा तो मैं तो छोटा बन जाऊंगा, या मैं तवाज़ु अख्तियार करूंगा, दरगुजर करूंगा, माफ कर दूंगा, मैं क्यों अखलाक दिखाऊंगा वाला, वो तो ऐसे नहीं है, फला तो ऐसे नहीं है। तो भाई इज्जत भी तो तुम्हें मिलेगी, अल्लाह के लिए दरगुजर कर दो, तवाज़ु अख्तियार कर लो, दरगुजर कर दो, देखो फिर क्या होता है। किसी मौलवी साहब का वादा नहीं है, नबी पाक आफ़द हो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, तकब्बुर नहीं दिखाना, ठीक है। तो तकब्बुर जो है ये इतनी खतरनाक चीज है, कहीं का इंसान को नहीं छोड़ती, और आप ये सूअर कुत्ते से ज्यादा बदतर बना देते हैं अल्लाह पाक लिल्ला। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदमी तवाहु अल्लाह के लिए कौन सी जगह यहां दिखाए। बाप जैसे बीवी के साथ भी तवाहु दिखा देता है, लेकिन वहां भी कोई ना कोई दुनियावी मुफाद होता है ना भाई, नहीं तो बाप बीवियां बहुत खतरनाक होती हैं, नेपोलियन मिसले नेपोलियन बोनापार्ट उठा के पटक देती हैं। तो लेकिन ऐसी कम होती हैं, ज्यादातर तो शौर्य हिटलर होते हैं। बहरहाल तो वो जो दिखाना है तवाहु वो अल्लाह के लिए नहीं है, वो अल्लाह के लिए नहीं, पर वो रिजल्ट नहीं आएगा समय। दफ्तर में ही बता दिया कि कोई ना कोई वफादार होते हैं, हम आज भी दिखाते हैं तवाहु से रहते हैं आंखें खोलते समय। तो तवाहु के मामला के चल रहे हैं, तो ये तवाहु है कहां पर। इसी तरह रिश्तेदारों में बार दफा हम जाते हैं, वहां पर भी कोई ऐसी खास लिल्लाह की शब्द पर नजर नहीं आती कि वहां हम मोहब्बत दिखाते हैं, तवाहु अख्तियार करते हैं, होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन मशायख फरमाते हैं बड़े बड़े औलिया अल्लाह सबसे ज्यादा लिल्लाह की जो कैद जो चीज वाफर मकदार में मिलती है, जो बेनिफिट मिलेंगे वो शेख से ताल्लुक के बाद। उसकी वजह क्या है, क्योंकि शेख के पास हम जाते हैं ना कोई नौकरी का रिश्ता है, ना कारोबार का रिश्ता है, ना रुपए पैसे का रिश्ता है, ना कोई दुनियावी मामला है, ना कोई शेख से रिश्तेदारी है, ना कोई खूनी रिश्ता है। कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो वहां कोई ना कोई हमारा नफ शामिल होता है, कोई ना कोई हमारा दुनियावी मुफाद होता है, लेकिन शेख की मजलिस में वहां आने का मकसद, ताल्लुक का मकसद होता है फकत लिल्लाह अल्लाह की जात और कुछ नहीं। जब इखलास पैदा हो जाता है तो फिर जब आदमी वहां पर इखलास दिखाता है, जब वह तवाज़ु अख्तियार करता है तो फिर वो लिल्लाहियत में आता है 100%, फिर शानदार उसको बदला मिलता है लिल्लाह। इसलिए शेख जब कभी डांट दे ये नहीं दे कि सही या गलत, तो अपने लिए जो है ना वो उसको हजरत वाला फरमाते थे इसकी मिसाल यूं समझ लो जैसे कोई आपको फेंक फेंक कर शर्फियां मार रहा हो और बोले अगर आपको जो शर्फियां मिलेंगी उसको अपने जेब में आपकी हुई, लेकिन तकलीफ भी हो रही है शर्फियां पड़ने की, लेकिन कोई तकलीफ की वजह से कहेगा कि बस अब आप ना मारे मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन कितनी तकलीफ हो रही है कहेगा मारे जा मारे जा मारे जा, क्योंकि भाई उसकी मिल्कियत हो रही है। ये ऐसी बातें नहीं है, खुदा की कसम खाए कह रहा हूं, जब आदमी को इन राज जब खुलते हैं ना, ये शेख की डांट मांगनी नहीं चाहिए, मशायख ने मना फरमाया, लेकिन कभी आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हजरत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह के खलीफा हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, देखा भी शायद, तो मजबूबियत उन पर जरा हावी रहती थी, तो जब वो मस्जिद में इमाम थे जामा मस्जिद में, तो जुमे की नमाज जब वो पढ़ाते थे तो 1-1.5 घंटा पहले ही ना वो पूरी मस्जिद फुल पैक हो जाती, वरना ऐसा होता नहीं। वरना आजकल तो ये हाल है कि वो तो जब खुतबा पढ़ा जा रहा होता है अरबी का उस वक्त लोग आना शुरू होते हैं बारह, तो पहले से लोग इसलिए आगे बैठते थे कि वो उन पर एक हाल तारी होता था। तो जब वो नीचे बैठते थे और बयान वगैरह शुरू करने से पहले आंखें बंद होती थी, तो बस जब उठने से पहले जो भी उनके सामने करीब बैठा हुआ घुमा के छांटा उड़ाते थे, सही बात, घुमा के एक छांटा देते थे। तो लोग इसकी जल्दी आते थे और करीब बैठने की कोशिश किया करते थे, तो थप्पड़ हमें पड़ जाए, उस चांटे के मुतलाशी होते थे। ये ऐसी हंसी मजाक की बात नहीं, ये सच्चे वाकयात में से। तो बस जिस जिसके वो चांटा पड़ता था, या तो उसे दुनियावी तौर पे कुछ मिलता था या उखरवी तौर पे, किसी को एक चांटे से कुतुब अब्दाल तक पहुंच गए, वो चंद दिनों में कहीं से कहीं पहुंचे। किसी के पास पड़ा तो गरीब था, मुफलिस था, मकरूस था, उसकी अपनी फैक्ट्रियां लग गई। तो बड़े अनवराब होते हैं, बड़े अनवराब होते हैं। इस पर तो अलग से बयान होता है, शेख की सख्ती और डांट डबट के ऊपर। फुलपुरी साहब रहमतुल्लाह, हमारे दादा शेख ने हमारे प्यारे मुर्शिद को एक बार फरमाया था कि मैं जो इतना तुम्हें डांट डपट करता रहता हूँ, तो तुम ज्यादा बुरा कभी इंसान है तो बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन दिल में एक इंसान की फितरत होती है, तुम्हें तकलीफ होती होगी, तो तुम इसका गम ना किया करो, क्योंकि एक वक्त आएगा मैं तो नहीं हूँगा लेकिन पूरे आलम में तुम्हारा डंका पिट रहा होगा मेरी शख्सी की वजह से। इसी तरह हजरत अली हजवीरी रहमतुल्लाह दाता दरबार कहलाते हैं, वो अपनी कशफुल महजूब किताब में बयान फरमाते हैं कि मैं जब नौजवानी अपने शेख को वजू करा रहा था तहज्जुद में, तो दिल में एक वसवसा आ गया कि अल्लाह पाक, अल्लाह का वली बनने के लिए एक वली की खिदमत इतनी क्यों करनी पड़ती है, आजकल तो खिदमत विमत नहीं होती भाई, बयान में भी कोई आ जाए तो ये बहुत बड़ी खिदमत हो जाती है शेख। बहरहाल तो वो कहने लगे कि अल्लाह, दिल में वसवसा आया हजरत अली हजवीरी रहमतुल्लाह की, अल्लाह ये क्यों करनी पड़ती है खिदमत, डायरेक्ट कोई मामला नहीं था, उनके शेख को कश्फ हो गया। वो मुस्कुराए, कहेंगे अली हजवीरी अगर तुझे तकलीफ हो रही है मेरी खिदमत के ऊपर, तो एक बात याद रखना, एक वक्त आएगा मेरा कोई नाम भी जानने वाला नहीं होगा, पूरे आलम में तेरा डंका पिट रहा होगा, ऐसी तेरी शोहरत होगी। और फरमाया कि याद रखना, अल्लाह जब किसी को कोई ऊंचा मुकाम देना चाहते हैं तो किसी बड़ी की खिदमत पर उसको लगाते हैं अपने शेख, उसके बाद ऊंचा मुकाम मिलता है। एक वक्त आएगा मेरा कोई नाम भी जानने वाला नहीं होगा, तुम अपनी शोहरत देखना कि पूरे दुनिया में तुम्हारा डंका पिट रहा होगा। और आज देखिए, आज कोई पूछे हजरत अली हजवीरी रहमतुल्लाह के शेख का नाम बताइए, मुझे भी नहीं पता, किताब में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। लेकिन दाता दरबार अली हजवीरी पूरी दुनिया में मशहूर है ना, ये शेख की दुआ थी, ये कहां से मिला, फनाइयत से, तवाज़ु से, खिदमत से, आजी से, उसके बाद मामला बढ़ते। इसी तरह एक बार बानी तबलीग हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह ने दो आलिमों को बांध दिया दरख से गुस्से में, एक कोई आलिम था पढ़ रहे तो सब तालिब इल्मी का दौड़ता और दूसरे तरफ पे बांधा अपने भतीजे शेखुल हदीस इतिहास ग्रंथ पे, और एक डंडा टाइप लेकर आए और उस आलिम से कहा, हाँ भाई क्या करूं तेरे साथ अब शुरू। वो बदतमीज टाइप का था, हजरत आप मेरे बाप की जगह है, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, चाहूं तो मैं भी बोल सकता हूँ आपको। बस इलियास साहब रहमतुल्लाह क्या उनका मुकाम था माशाल्लाह, वही हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़े और उसको खोला, कहना बेटा माफ कर देना मुझे, अकल दिखाता हुआ चला गया वो। फिर दोबारा फिर एक आए अपने भतीजे की तरफ, वो भी बंदे के जाने, हाँ तेरे साथ क्या करूं, मैंने कहा चाचा हमने तो अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, चाहे तो जिंदा छोड़ दें जान से मार दें। फिर उसके बाद वो खोला और वो इतना रोए लिया सब रंग रहे, तो दोनों एक दूसरे से लिपट के रोने लगे, काफी देर तक रोते रहे। तो शेखुल हदीस जिक्रिया साहब रहमतुल्लाह ने मुजाहिदा किया ना, आज उस मुजाहिदे की बरकत की अकल खत्म करी और आज ही तवाज़ु अख्तियार करी, शेख भी थे भतीजे उनके चचा भी थे, तो अल्लाह ने फिर क्या मुकाम दिया कि फवैल इमारा फवैल सदकात, ये दो कितनी नायाब किताबें, कहते हैं कुरान पाक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली यही दो किताबें, जबकि इस इन मौजूआत में खुदा की कसम मार्केट में बेशुमार किताबें आपको मिलेंगी, अहले हक लोगों की है, सही है सब कुछ, लेकिन क्या कभी गौर किया हमने कि बाज़ किताबों को अल्लाह ऐसी शोहरत देते हैं कि क़यामत तक के लिए महफूज हो जाती हैं, क्या अल्लाह उसका फैज़ बुलाते हैं। बात ये होती है कि उन किताबों के लिखने वाले जो मुसन्निफ़ होते हैं उनके पीछे पूरे उनके मुजाहदात भरे हुए होते हैं, तो वो अनवारात जो होते हैं मुजाहदात के, वो भी कलम के जरिए तहरीरात के जरिए लोगों के क़ुलूब में मुंतकिल हो जाते हैं, जिससे लोगों को हिदायत मिल जाती है। वो खाली मुसन्निफ़ नहीं थे, उसके पीछे उनका पूरा दर्द दिल था, मुजाहदात थे, तवाज़ु थी, लिल्लाहियत थी, ख़शियत थी, आज़ीम की सारियत थी, मुजाहदात का रंग था जो किताबों के अंदर मुंतकिल हुआ, जैसे पूरी दुनिया में उनकी खुशबू उड़ी। ये मिटे हुए लोग थे या आजी वाले लोग थे। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, इतनी आजी और तवाज़ु रहता था उनके ऊपर, हलवाए हाल में थे कि घर में ही अपने बीवी बच्चों से किसी से अगर पानी भी मांगना होता तो बराह रास्त ये नहीं कहते थे कि कि भाई तुम पानी पिलाओ मुझे, ये फरमाते थे। अगर ये अरे कोई है जो पानी पिला दे, ये बड़ी बारीक बात होती है, अरे कोई है, अरे कोई है जो पानी पिला दे, बताइए आप, तो कोई ना कोई पानी पिला दिया करता था। यानी इतनी आजजी, इतनी फनाइयत। और क्या हाल था इनका कि जब कभी आप जब इन मजलिस से लोग उठ के आते थे, कभी चाय वगैरह पिलाते थे, चले जाते थे, तो फिर उन कपों को देख के रोया करते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे हाजी साहब के, कहते थे बताओ मेरे भी अहबाब बैठे हुए थे, अभी इन प्यालियों में चाय पी रहे थे। क्या मोहब्बत थी, क्या आजजी थी, मामूली बात है। आजजी तवाज़ु बहुत अजीम चीज होती है। तो बाग दफा शेख जो होता है वो चेक करता है कितना अर्सा हो गया आते हुए, अकड़ कितनी खत्म हुई, तकबर कितना खत्म हुआ। तो कभी कभार शेख चेक करता है, मतलब क्या होता है, इम्तहान लेता है। इम्तहान के बाद क्या होता है, प्रमोशन मिलती है ना भाई, बस तो फिर प्रमोशन मिलना होता है। लेकिन अगर इम्तहान में पास हो गया तो बंदा बंदे के प्रमोट हो जाता है बंदा, और अगर फेल हो गया तो फिर वही फिर दोबारा टाइम लगेगा उसको आगे बढ़ते बढ़ते। तो शेख की हर अदा को पॉजिटिव लेना चाहिए, शेख पागल नहीं होता ना दुश्मनी की से। तो माँ बाप से जैसी मोहब्बत करते हैं मशाइख जो होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि अल्लाह तक पहुंच जाए, और अल्लाह के रुख्ते में जो रुकावट जो आ रही है, जिन जिन गुनाहों की, ओपे बा की, ओपे जा की, और जितनी भी जाही और बाही अमराज है, ये बड़े बड़े जो गुण बैठे हुए, जब तक इसके अंदर रहेंगे, आया हमारे पास जिस मकसद के है, वो उसका मकसद पूरा नहीं होगा। ये बुध गिरेंगे तो अल्लाह मिलेगा ना इसे, तो फिर उनको अपना काम करना नहीं, तो अल्लाह की तरफ से मशायख की भी पकड़ हो जाती है कि तुमने अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी पूरी नहीं, तुमने क्यों नहीं करी। एक बंदे में तुम देख रहे थे गुस्सा, एक में देख रहे थे तुम तकब्बुर, किसी में तुम शहवत का मर्ज देख रहे थे, इसलिए क्यों नहीं कर रहे थे, क्या चक्कर था, क्या वजह थी, काहे के मुफले थे, काहे के शेख थे तुम। तो शेख की भी पकड़ हो जाती है। तो इसलिए सबको अपनी अपनी ड्यूटी करनी होती, शेख को अपनी ड्यूटी करनी है, और जो मुरीदीन होते हैं उनको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, इसलाह करानी चाहिए। सब अपनी अपनी ड्यूटियों के पाबंद है। शेख से उसके मुताल्लिक पूछा जाएगा कि तुमने कहां तक अपनी ड्यूटी अंजाम दी, मुरीदों से उनके मुताल्लिक अल्लाह पाक पूछेंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तआला शानुहु। इसी तरह एक और बहुत ही खतरनाक हदीस शरीफ है, अच्छी भी और खतरनाक भी है। हमारे प्यारे आकद ने इरशाद फरमाया कि कोई इंसान ऐसा नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं है, मतलब उसमें मुसलमान काफिर की भी तफसीस नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं है बनी आदम का कि जिसके सर में दो जंजीरें ना पड़ी हुई हो, दो जंजीरें नजर नहीं आती हैं, इन्हीं को लोग भाई ढूंढना शुरू कर दे, दो जंजीरें पड़ी हुई हैं। तो एक जंजीर जो होती है वो जमीन की तरफ जा रही है, और एक जंजीर जो है वो सातों आसमान के ऊपर तक जा रही है। वो जंजीर, दो जंजीर है हर इंसान की, एक ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे की तरफ। तो जब कोई बंदा अल्लाह के लिए तवाज़ु अख्तियार करता है, अकड़ खत्म करता है, अपनी बड़ाई को खत्म करता है, तवाज़ु अख्तियार करता है, तो अल्लाह पाक उसको ऊपर जाने वाली जो जंजीर है उससे उसको बुलंदी देते हैं, यहां तक कि उसको ऐसी इज्जत और ऐसा उसको मुकाम देते हैं कि वो सातों आसमानों से ऊपर तक पहुंच जाता है। और जो अकल दिखाता है, बदमाशी दिखाता है, अपने आप को बहुत ऊंची चीज समझता है, गुस्सा दिखाता है, अकड़ीला बना रहता है, अकड़फू वाला जो शख्स होता है, तो फिर अल्लाह उसको ऐसी जिल्लत देते हैं कि फिर नीचे वाली जमीन हरकत, नीचे वाली जो जंजीर होती है जो जमीन पे पड़ी रहती है वो फिर हरकत में आती है। फिर अल्लाह पाक उसको ऐसा जलील करते हैं, ऐसा पस्त करते हैं दुनिया में, और यहां तक कि उसको ऐसा जलील पस्त करते हैं कि उसको सातों उस जंजीर के जरिए सातों जमीनों के नीचे दफन करते हैं, उसको वहां भेजते हैं। यानी जहन्नम जो है वो जमीन के नीचे है और जन्नत आसमानों में है, और सातों जमीनों के नीचे ये काफिर और मुनाफिकीन के बाद की जगह है। उलमा कराम ने किताबों में लिखा है कि सातों जमीन सबसे जो सातवीं जो जमीन है, सात जमीन है, सात आसमान, सातवीं जमीन जो आखिर की उसमें मुनाफिकीन है। इतना खतरनाक मुनाफिकीन का मामला है, जो ना काफिर होते हैं ना मुसलमान होते हैं, वो धोखेबाज होते हैं। तो वो सातवों उनको सातवां हिस्सा मिलेगा, सबसे आखिरी, इसके बाद कोई हिस्सा, उसके ऊपर फिर चढ़े हिस्से पे काफिर, फिर उसके बाद यहूदी, और फिर उसके बाद ईसाई, इस तरह से फिर आखिरी हिस्से पे खामोश हो गए थे आप। तो फिर सहाबा कराम ने डरते डरते पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन के पहले हिस्से तो आपने बताया नहीं, उसमें कौन होगा? तो फिर आपकी आंखों में आंसू आ गए, और फरमाया मेरी उम्मती होंगे जहन्नुम के पहले हिस्से में, है ना। तो जितनी गहराई होगी जहन्नम उतनी खतरनाक होगी। तो जहन्नम को जो पहला हिस्सा होगा नहीं, वो नहीं हल्का हिस्सा होगा उस एतबार से, वरना तो बहुत खतरनाक होगा। उसमें मुसलमान होंगे जब काफी हाजिर थे। तो ये तकब्बुर जो है ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, सिवाय जिल्लत के कुछ इंसान को हासिल नहीं होता। इसी तरह एक बार रसूल अल्लाह हमारे प्यारे आकाद हो जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन बैठे हुए थे। ये वाकया हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने तफसीर कबीर में बयान किया है। तो करीब से हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे, तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने इरशाद फरमाया ए जिब्राइल, तुम तो आसमानों की मखलूक हो, तुम मेरे सहाबी को क्या जानो। तो इरशाद फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनको मदीने वाले क्या पहचानेंगे, सही मायनों में तो इनको आसमान वाले हम लोग पहचानते हैं, अल्लाह के दरबार में इनकी बड़ी शोहरत है, अल्लाह के दरबार में, फरिश्तों के आलम में, आसमानों में बहुत इनका ऊंचा मुकाम है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या इनका ऐसा मन है। फरमाया दो बातों की वजह से, पहले तो ये अपने आप को नफ्स में बहुत छोटा समझते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, आज भी इनकी सारी बहुत है, तो मैं कुछ नहीं हूँ, जितने भी लोग हैं उन सबसे कमतर हूं मैं, बहुत ही कम हूँ, सब मुझसे अच्छे। इस बात ने इनको वो बुलंदी वो इज्जत दी है कि अल्लाह के दरबार में फरिश्तों के दरबार में इनका गलगला मचा है शोहरत में इज्जत में, कुछ ना समझने की वजह से। और दूसरा जो है वो कुरल्लाह शरीफ के आशिक हैं, कसरत से कुरल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। तो तलावों से क्या क्या चीजें हासिल होंगी। एक बार हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए मूसा, तुम जानते हो हमने तुम्हें अपना नबी क्यों बनाया। उन्होंने कहा नहीं यार रब्बे करीम, आपको ही ज्यादा पता है। फरमाया एक बार तुम हमारी जनाब मेरी जमीन पे, आज ही से कोई गलबा हाल हुआ होगा हजरत मूसा अलैहि सलाम को मालूम, तो जमीन पे पत्नी किस अंदाज से आज ही के साथ पड़े हुए थे कि अल्लाह ने फरमाया कि बस वो तुम्हारा जो अंदाज था जमीन पे पड़े रहने का आज ही वाला मुझे पसंद आ गया, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अपना नबी बनाऊं, तो तुमने अपना नबी बना लिया। तो आज ही की वजह से हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया था, आज ही की वजह से। और तकब्बुर की वजह से शैतान को रजीम का तुम मर्दूद है, निकल यहां से। तो तकब्बुर से मर्दूद इंसान बनता है और आज ही से नबी तक पहुंचा देते हैं अल्लाह पाक। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हमारे नबी आखिर हो जाओ सल्लम आखिरी नबी, यानी ये बताना है। इसी तरह एक बार हजरत मूसा अलैहि सलाम बकरियों को चरा रहे थे, सुबह का वक्त वाली मतलब एक बकरी भाग गई रिवर से, भागती ऐसी भागी कि पकड़ में ना, ये भी भागते रहे घूमते रहे उसको, यहाँ तक के मगरिब हो गई, सुबह से मगरिब में जाके मिली जंगल में, अवसर हो गया, गहरी बात है लगाए कितने घंटों लगे होंगे। जब वो बकरी मिली तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और अपने पैरों, इनके जो पैर थे मूसा अलैहिस्सलाम के लहू लहान हो चुके थे, कांटे घुस गए थे, गहरी बात जंगल पहाड़ी इलाका फट गए थे, जख्मी हो रहे थे, पैर खून बरस रहा था और कांटे भी घुस गए थे और बकरी के भी कांटे वगैरह घुस गए थे। तो जब वो बकरी मिली तो उसको गले से लगाया और रोने लगे, कहने लगे ए बकरी, अगर तुझे मूसा पे रहम नहीं आ रहा वो तो कम से कम अपनी जान पे तो रहम करती, देख तेरी क्या हालत हो गई, रोते जा रहे हैं और उसके कांटे निकालते जा रहे हैं। वरना भाई आम हालात में अगर हम कोई चरवाहे होते और कोई बकरी इस तरह करती और हमें तंग करती और सुबह के बजाय मगरिब में मिलती तो पैर तो निकालते छुरी और उसको उठा के पटकते, तेरी ऐसी की तैसी है, कितना तंग किया। तो बस कहते हैं जब ये हालत देखी तो फरिश्तों ने अल्लाह से फरमाया अल्लाह पाक ये कोई आम आदमी नहीं है, अल्लाह ये साबिल है, इसको नबी बनाया जाए, इतना दरगुजर, इतनी आजीब सुनाइए, इतनी मिलनसारी, इतनी तवाजो। तो अल्लाह ने फरमाया तुमने अपने इल्म से सही अंदाजा लगाया, आइंदा मैं इनको अपना नबी बनाने वालों। तो आज ही जब नबूवत मिल रही है आज ही से, तो भाई क्या विलायत नहीं मिलेगी, वलीउल्लाह नहीं बनेगा आदमी, वो तो दरवाजा खुला हुआ है ना भाई कयामत तक के लिए। लेकिन भाई इसमें भी एक मसला समझ लें, आजकल ज्यादा अखलाक और तवाज़ो दिखाना भी गले पड़ता है। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ, दिल में तो अपनी इकारत जिल्लत तवाज़ो कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, लेकिन दिल में भाई लोगों से नहीं बोलना, क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया लोगों से यार मैं बहुत ही जलील और घटिया हूँ, बहुत कमतर हूँ, आप बहुत मुझसे अच्छे हैं। तो अगर समझे ऐसी बात लोगों से मत करो, क्योंकि हाफिज ने बोल दिया हाँ यार तू सही कह रहा है जैसा तू है। तो और गुस्से में आ जाएगा बंदा, और गुस्से में आने का दलील है कि तुम दिल से नहीं कह रहे थे, ऊपर से ऐसी नक्शेबाजी हो रही थी सारी। तो इसलिए ये अल्लाह से मुराकबा रखना, मुराकिब रहना अल्लाह से, मखलूक के आगे नहीं बोलना है। तो बात हो रही थी आजकल का दौर ऐसा, दिल में तो अपनी ही कार हो तो आज ही फनाई है, लेकिन आजकल का दौर कुछ इस तरह का चल रहा है कि अगर ज्यादा किसी से कुछ तवाज़ुन दिखाएं, या ज्यादा अखलाक दिखाएं, या ज्यादा बदतीफी निकाल के मिले हर शख्स के बगैर जान पहचान के ज्यादा, तो चलो तहकीक हो अच्छी तरह से और आदमी ने मामला किए हो तो कोई नहीं है, लेकिन हर एक से नहीं। तो आजकल का चूंकि फितने का दौर है, तो इसलिए आदमी अपने आप को महदूद रखे, कम बोले, कम लोगों से मिले, सिलेक्टेड लोगों से मिले। तो ये तकब्बुर नहीं होता, ये अल्लाह नियतों के हाल से वाकिफ है। तो ये जो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारी मजबूरी है, दिल में तो अपनी ही फारत है कि हमसे कोई बुरा नहीं है, हमसे ज्यादा कोई बुरा नहीं है। इसी तरह ये तो एक मसला हो गया। इसी बात को हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपने शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को फरमाया था कि ज्यादा तुम चूंकि तुम इल्मे दीन का काम कर रहे हो, तो ज्यादा लोगों से हंसना बोलना मत, ज्यादा लोगों से अखलाक मत करना, लोगों से जरा दूर दूर रहना, कम मिलना, और ये ज्यादा दांत मत निकालना, ज्यादा हंस हंस के मत मिलना, नहीं कह कह मत लगाना, बहुत ज्यादा अखलाक मत करना, नहीं तो तुम्हारे सारे दीन के काम धरे के धरे रह जाएंगे, नहीं मखलूक इतना तंग करेगी मुख्तलिफ शक्लों में। तो जितना आदमी अपने आप को महदूद रखता है उतना शर से बचा रहता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया था, गोरबे कयामत फितनों के दौर में निजात की जो दो सूरतें होंगी, एक तो घर से कम निकलना, नंबर दो अपनी जबान को काबू में रखना। तो घर से कम निकलना, जरूरत के तहत निकले आदमी, बहुत ज्यादा सोशल बनने की जरूरत नहीं है, और दूसरा अपनी जबान को काबू में रखना है, नंबर तीन अपनी खताओं पर रोते रहना है। यह आप सल्लम की खास नसीहत थी फितने के दौर में। बहरहाल तो ये जो चीजें हैं तो तकब्बुर से इसका ताल्लुक नहीं है, ये मजबूरी में ये हिकमत कहलाती है, सुकून और आफियत से रहने के लिए। एक तो ये बात, बाकी अपने आप को दिल में सबसे ज्यादा हकीर समझना है, बदतर समझना है, कमतर समझना है, बुरा समझना है, चाहे आदमी कुतुब अब्दाल भी बन जाए। मिसाल क्या दे दी, बाकी खत्म हो गया, कुतुब के मुकाम पर कोई है या अब्दाल के मुकाम पर है, गौस के मुकाम पर भी अगर है, तो अल्लाह से डरते रहना है, अपने आप को सूअर और कुत्ते से भी बदतर समझना है अगर कोई इस मुकाम का भी है। ठीक है, हमारा नाम अशरफ बशरा में नहीं आया, कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, वो तो अशरफ बशरा जिनके नाम आए थे हम सबको पता है, वो तो उनका मुकाम था भाई, उनके ही जन्नत का सर्टिफिकेट आया था। आज कौन कह सकता है कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला हूं और मैं जन्नती हूं। सईदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह गौसुल आलम ने कहलाते हैं, बड़े पीर साहब, वो बरमाते लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, एक दफा आप बहुत जबरदस्त हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, आप ऐसे वैसे रोने लगे, और फारसी में एक शेर फरमाया जिसका तर्जुमा ये था, क्यों, क्या तुमने गौर देख लिया, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जनाजा क्या मैयत कब्र के अंदर उतर गई, क्या फरिश्ते आ गए, क्या हिसाब किताब हो गया, क्या तुमने देख लिया मेरा खात्मा ईमान पर हो गया और अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। और रोते फरमाते हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो तो तुम लोग कौन होते हो मेरी कीमत लगाने वाले, पहले के जब मेरा खात्मा ईमान पर होगा सब पता चलेगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस मुकाम का था, अभी कहां, अभी कहां। तो ये थे अल्लाह वाले, ये उल्मा कराम फरमाते हैं गौस के मुकाम के लिए, लेकिन आज ही देखिए रोने लगे कि क्यों तारीफ कर रहे हो मेरी, अभी कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये कहलाते हैं आजीज बंदे, जिनमें तवाज़ु होती है, जिनमें लिल्लाहियत होती है, जिनमें खशियत होती है। एक बुजुर्ग थे, उनका पड़ोसी था, उनको छेड़ा करता था, बाद बदतमीज लोग भी होते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत लोग करते हैं, कुछ आसिदीन भी होते हैं, कहते थे अरे बड़े मियां तुम्हारी उनकी दाढ़ी सही तरह से नहीं निकलती थी, जैसे बाल लोग के होती ना घड़ी नहीं होती, कहीं से होती कहीं से नहीं होती, इस तरह के बात थे। तो मजाक उड़ाता था कि तुम्हारी दाढ़ी से अच्छी तो मेरी बकरी की दाढ़ी है, वो बुरा नहीं मानते थे, कहते थे बेटा सही कह रहे हो, सकता है, हो सकता है तू सही कह रहा हो, वो समझते नहीं थे किस बात को लेके कहते हैं तू सही कह रहा है। अल्लाह का करना है, फिर वक्त आया, अल्लाह को प्यारे हो गए, मैयत जब जनाजा जा रहा था, ये सच्चे वाकयात में से बाग दफा अल्लाह करामत दिखाते हैं वलियों की, तो अपने घर के बाहर खड़ा था वो नौजवान, तो जब उनकी मैयत उसके सामने से गुजरी तो अचानक वो कफन में से उठ के बैठे, और उसको नौजवान की तरफ देख के कहा अपनी दाढ़ी को पकड़ के, मैं गलत कहता था कि हो सकता है सो कि तेरी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी हो, मैं गलत कहता था, आज मेरा खात्मा ईमान पर हो गया, आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मेरी दाढ़ी तेरी बकरी की दाढ़ी से अच्छी साबित हुई क्योंकि मेरा खात्मा ईमान पर हो गया। ये कहो दोबारा गिर गए, मतलब ये थे कि जब तक जिंदा थे तो ये बुरा नहीं मानते, तो कहते हो सकता है कि अगर मेरा खात्मा खराब हो गया फिर ये दाढ़ी जो है ना मेरी, फिर मेरी दाढ़ी वगैरह और ये नमाज और टोपी किसी चीज के किसी काम की नहीं होगी, फिर इस दाढ़ी से अच्छी तो बकरी की दाढ़ी। वाकई सही कह रहा है वो सही निकली। कहते हाँ बेटा तू सही कह रहे हो, सकता है तू सही कह रहे हो। उस वक्त वो वहां चले जाते तो उसको पता ही नहीं, ये होती है अल्लाह वालों की सुन, बुरा नहीं मानते। जब हाथ में ईमान पर होगा फिर खुशी मनाई उन्होंने, इसलिए खुशी मनानी है जब अल्लाह पाक हमें पास कर दें, और पास कब होंगे नजा के वक्त अभी से, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वो बोले अगर आप बहुत जबरदस्त बयान करते हैं आपका आपके बयान में बिजलियां चमकती हैं, कल मैंने आपको खौफ में देखा आप हवा में उड़ रहे थे, तो अल्लाह फरमाते थे कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई तारीफ करे, क्योंकि गुलाम किसी गुलाम की कीमत लगाता है तो उसकी कीमत बढ़ती नहीं है, गुलाम की कीमत हमेशा मालिक लगाता है। गुलाम प्लस गुलाम इज इक्वल टू गुलाम, मट्टी प्लस मट्टी इज इक्वल टू मट्टी। अब दो गुलाम आए हो मंडी में, पहले गुलामों की मंडी लगती थी, एक गुलाम बोले यार तू तो बहुत ही जबरदस्त है, तेरी कीमत तो मुझे लग रहा है बहुत लगेगी, तू इतने में तुझे जाना चाहिए, तो दूसरा गुलाम कह रहा तेरे बोलने से क्या हो रहा है, तू थोड़ी कीमत लगाए हो, तो मालिक देख के पसंद कर ले तो बात है फिर देखा जाएगा। तो इसी तरह हम सब मट्टी के हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, एक दूसरे की हम तारीफ करते रहे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो ज्यादा खुशहमी में उबला नहीं होना चाहिए कि जी मेरी तो बड़ी तारीफ हो रही है, पर अल्लाह मरते हुए अल्लाह ने खात्मा अल्लाह ने करे खराब हो गया तो क्या फायदा भाई। तो इसलिए ये जाहिलाना सोच होती है, हाँ शुक्र अदा करे कोई तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है, कोई तारीफ करता है किसी की। जैसे सहाबा कराम ने एक बार कहा या रसूलुल्लाह सल्लम फला शख्स की बहुत लोग तारीफ करते हैं तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या फरमाते हैं, तो आपने इरशाद फरमाया अल्लाह विषय फरमाए कि ये उसके जन्नती होने की दुनिया में नकद बशारत है, ये भी तो एक इज्जत है ना, उसकी तारीफ करो तो बस आपने फरमाया उसके जन्नती होने की दुनिया में नकद बशारत है अगर कोई किसी की बहुत तारीफ कोई करता है। लेकिन वही बात, लेकिन 100% तो भाई ये तो नजर के वक्त ही पता चलेगा क्या हमारे साथ मामला होने वाला है। जो अपनी नजरों में जलील और हकीर हजरत पाला हमारे मुर्शिद मोहम्मद अख्तर साहब रहमत इरशाद फरमाते थे, जो अपनी नजरों में प्यारा है अच्छा है, अपने आप को नेक मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह वाला समझता है, अपनी नजरों में अच्छा समझता है, अल्लाह की नजरों में जलील है, और जो अपनी नजरों में जलील गिरा हुआ है और अपने खुद को बुरा समझता है कि मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह की नजर में बहुत उसका ऊंचा मुकाम। तो अगर फरमाते तो सोच लो कि अब हमारा जो काम बनेगा खुद अपनी नजरों में प्यारे बन जाए या अल्लाह की नजरों में प्यारे बन जाए, तो क्या अल्लाह की नजरों में प्यारा बनना है तो उसका क्या तरीका है कि भाई हम जो है अपनी नजरों में जलील हो जाए दिल से। इतना ही आदमी ऊंचा मुकाम हासिल कर ले, लेकिन दिल में अपने आप को समझे मुझसे ज्यादा कोई बदमाश नंबर वन कोई नहीं है, ये तो मरते वक्त पता चलेगा। इसलिए हाजी इमदादुल्लाह माजिद मक्की रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे अगर कोई तारीफ करे तो उसके जाने के बाद ये मुराकबा किया करो कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मेरे ऊपर सत्तारी की चादर उड़ा दी कि मेरे गुनाहों को जराइम को तूने छुपा दिया, अगर अल्लाह पाक तो जाहिर फरमा दे और मेरे अतरे पतरे खुल जाए तो कोई पास बैठना मेरे पास पसंद ना करे। ये बुजुर्गों के बताए हुए मुराकबे हैं। इसी तरह हदीस पाक का खुलासा है कि जहन्नम से गर्दन निकलेगी कयामत वाले दिन। अब बताइए एक तो कयामत वाले दिन जहन्नम, फिर उसमें से गर्दन निकलेगी और उस गर्दन की दो आंखें होंगी, दो कान होंगे और उसकी एक जबान होगी जिससे वो देखेगी सुनेगी और जबान जिससे वो बोलेगी। वो कहेगी कि मैं तीन लोगों पर मुसल्लत कर दी गई हूँ अल्लाह की तरफ से, मुशरिक के ऊपर और मुशरिक पर तस्वीर बनाने वाले पर, मुशरिक पर और हर तस्वीर बनाने वाले के ऊपर। आजकल मुझे हर वक्त जो ये स्नैपशॉट लेते रहते हैं ना मोबाइलों के ऊपर, डरना चाहिए ये चीज अच्छी नहीं है, जानदार की तस्वीर ना ले किसी भी, हाँ वैसे बेजान चीजों की ले लें उसकी इजाजत है। तो उस गर्दन ने कहा कि मैं तीन लोगों पर मुसल्लत कर दी गई हूँ अल्लाह की तरफ से, एक तो मुशरिक के ऊपर, दूसरा तफसीर बनाने वाले के ऊपर, और हर जाबिर मुतकब्बिर पर। जाबिर मुतकब्बिर किसे कहते हैं? जो तकब्बुर के साथ जालिम भी हो, जुल्म करता हो। मुतकब्बिर होना अलग जुर्म है और जालिम मुतकब्बिर होना ये अलग जुर्म है, ये डबल डबल जुर्म है। तो आज हमारे यहाँ लोग बकसरत जालिम भी बहुत हैं और मुतकब्बिर भी बहुत हैं। तो जुल्म से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए, तकब्बुर से बचना चाहिए। और भाई बहुत दर्दे दिल से, गुजारिश से, दर्दे दिल के साथ ये बात कहता हूँ, इल्तिजा के साथ कहता हूँ कि ये गुस्से और जुनून के वर्ष से बचे, तकब्बुर से, और खास तौर पर जुल्म करने की से। क्योंकि देखिए, गुस्सा होगा तो जुल्म होगा, तकब्बुर होगा तो जुल्म होगा। तो जुल्म बाद में होगा, पहले गुस्सा और तकब्बुर होता है, फिर जुल्म होता है। तो जो जहां जिस अंदाज में जालिम है, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे खानदान हो, चाहे उसके बीवी बच्चे हो, अगर वो जुल्म कर रहा है, मैं इशारा दे रहा हूं, बुजुर्गों की निस्बत हासिल 25 साल हो गए, उस सोहबत की रोशनी में मैं ये बात आपको कह रहा हूं, अगर इसलाह नहीं करवाई, खास तौर पर इस गुनाह की, जुल्म की, तो मुझे कहते हुए डर लग रहा है तो कोई अल्लाह की तरफ से जबरदस्त पकड़ना आ जाए। भाई सुन रहे हैं ना सब ये बात गौर से? अब इससे ज्यादा मुझे इजाजत नहीं है मैं और कुछ बोलूं, मेरी पकड़ ना हो जाए। लेकिन वही बात कि मुझे भी तकलीफ होगी, मुझे भी दुख होगा फिर बाद में। तो जुल्म के बाद जो है किसी शेख वेख की कोई दुआएं में फिर असर नहीं करती इतना ज्यादा, जब तक आदमी जुल्म से बाज नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी अंदाज में। वही बात कि सवाल ये नहीं गुनाह क्यों हो रहा है, जुल्म क्यों हो रहा है, भाई इसलिए तो कराओ, बताओ तो सही, अगर गंदा है तो बैग होने का मकसद क्या है? शेख के पास लड्डू पेड़े लेकर आना इन चीजों का भूखा है शेख, इसलिए बैठा है शेख। जो असल मकसद है शेख का, उससे तो आप हासिल ही नहीं कर रहे वो चीज इस्लाह की। बाज दफा हमें तो नहीं, अल्लाह हमें भी मुकाम अता फरमा दे अपने प्यारों की नस्बत। बाज अल्लाह वालों को कश्फ इल्हाम के जरिए अल्लाह की तरफ से दिखाया जाता है कि ये बाज नहीं आ रहा बदमाशी से। तुम इतने बयान करते रहते हो, कुरान हदीस सुनाते रहते हो, प्यार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम उसको इस्लाह करते रहते हो, लेकिन एक कान से सुनता है दूसरे कान से उड़ा देता है। भाई आंख खोल के सुने, एक कान से सुनता है दूसरे कान से उड़ा देता है। तो ये ढिटाई अच्छी चीज नहीं है। फिर अल्लाह कहते हैं शेख को तू हट जा बीच में से, बस बहुत हो गई, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए दुआ करने की, निकाल देते हैं शेख को, खबरदार बस चुप, कोई दुआ नहीं होगी अब। फिर डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से थर्ड डिग्री आती है उसको। तो अल्लाह ऐसी ढिटाई से, ऐसी बेहिशी से बचाए, ऐसी ढिटाई, ऐसी गफलत से आदमी बचाए। तो जब शेख कोई प्यार से अल्लाह रसूल की बात समझाए तो अकलमंदी का तकाज़ा ये, उसको सोच समझ के बिठा ले दिल के अंदर, इंतजार ना करे जूतों का। बाज लोग जूतों की समझते हैं, क्या करें, प्यार की समझते हैं, हर एक इंसान की जबरदस्त होती है ना। तो जब तक वो जूते नहीं पड़ेगा कहता ओके यू आर राइट, समझ में आ गई, जूता पड़ा ना, अब क्या करें भाई। अब किसी का ऐसे ही अगर मिजाज हो तो आजमाना नहीं चाहिए शेख की बातों को, ना शेख हर एक को पकड़ पकड़ के बोलेगा जी मुझे भी कष्ट हुआ है और आपके साथ ये होने वाला है, आप फला हरकत कर रहे हो, फला बदमाशी आप कर रहे हो। शेख का काम नहीं है ये। अगर शेख को बिलफर अल्लाह की तरफ से कुछ कष्ट इलाम अगर हो भी जाए, शेख हमेशा इशारे किनाए में बताएगा ना, वो बराह रास्त बोलेगा, क्योंकि वही बात लोगों में तकब्बुर इतना, शेख को पता भी बोलूंगा उठ के भाग जाएगा, जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है आना भी छोड़ देगा, तो शेख का कोई नुकसान नहीं है और मजीद बर्बाद होगा। तो अल्लाह उसको बर्बादी से बचाने के लिए मुखातिब ही नहीं होगा शेख उससे, बराया हमेशा डायरेक्टली बात करेगा, जनरली बात करेगा, लेकिन जिसको कही जा रही होगी, जिसे को वो वहां तक बात पहुंचाई जाती है, वो पहुंच जाती है और समझ भी जाता है मुझे कहा जा रहा है, लेकिन वो बदमाशी छोड़ने पर तैयार नहीं होता। बता रहा हूं फिर अल्लाह की तरफ से ऐसी पकड़ आएगी कि बस मत पूछो, फिर बिस्तर पेशाब बिस्तर पर पेशाब पकाना ना हो फिर। जुर्म ना काबिले खतरनाक जुर्म है ये, बचना चाहिए इससे। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके अगर तुम जमीन वालों पर रहम करोगे अल्लाह तुम पर रहम करेगा। हम नहीं चाहते अल्लाह वालों पर रहम करे, नहीं चाहते, और फरमा दिए जो तुम अल्लाह की मखलूक के साथ रवैया करोगे वही अल्लाह तुम्हारे साथ करेगा। अगर हम मोहब्बत करेंगे मखलूक के साथ अल्लाह की, तो फिर अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। अगर हम भूल नहीं करेंगे, लोगों की खताओं को दरगुजर करेंगे, तो फिर अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर कर देगा। इसको माफ करो, ये बहुत माफ करता है लोगों की खताओं को। अगर ज्यादा मकान दिखाएंगे तूने किया कैसे ये, फिर अल्लाह कहेंगे अच्छा बहुत तू बन रहा है ना इंसाफ पसंद आदिल, लोगों की गलतियां पकड़ा ना, तो चला अबा मैदान में, तेरी इतनी गलतियां मैं सब पकड़ता हूँ तेरी गलतियां, अकल दिखा रहे हैं तू बहुत बावसूल मुंसिफ बन रहा है। अगर तेरा वो कसूरवार है ए मेरे बंदे, तो तू भी तो मेरा कसूरवार है, मैं भी तो तुझे माफ कर रहा हूं, तो तू आगे मेरी मखलूक को माफ क्यों नहीं करता। तो भाई हम देख ले, हम फिर अल्लाह से क्या फैसले करवाने चाहते हैं अपने लिए, हम ये चाहते हैं ना अल्लाह हमें माफ करे, हम भी तो सुबह से रात तक 1000 गुनाह करते हैं, हम क्या चाहते हैं अल्लाह की पकड़ ना है, अल्लाह का अज़ाब ना है, अल्लाह मेरी नाफरमानी के बावजूद रोटी पानी खाना देते रहे, अल्लाह मुझे ऐश कराते रहे, मुझे चैन से रखे, मुझे आफियत से रखे, मैं दाढ़ी मुड़ाता रहूं, बदनवरी करता रहूं, हराम काम करता रहूं, मोबाइल पर नंगी फिल्में देखता रहूं, नमाजें छोड़ता रहूं, लेकिन मेरे अंदर ये ख्वाहिश मजे मेरे वैसे आते रहे। और वाकई अल्लाह पाक हमारे साथ कर रहे हैं ना ऐसा, कहां अल्लाह पाक हमें अज़ाब में मुब्तला करते हैं। जब हम अल्लाह से इस तरह का मामला चाहते हैं, तो फिर उसकी ये सारी चीजें कब पूरी होंगी, जब उसकी मखलूक के साथ भी दरगुजर का मामला करेंगे। आगे से माफ करने पर तैयार नहीं है और चाह रहे अल्लाह मुझे माफ करता रहे, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ये उल्टी चीज नहीं चलाएं। तो बताना मेरा काम है भाई, शायद के दिल में उतर जाए, तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, बताना हमारा काम है भाई, इतना देना, आगे अमल करना ना करना वो लोगों का काम है, बस हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अपने आप को भी हमें बचाना होता है अल्लाह की पकड़ से। एक तुम पर अगर कोई चीज आया हुई तो तुमने उसको क्यों नहीं बताया ताकि लोगों की इसलाह होती, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अब जो लोग सुन रहे हैं वो अपने आप को देखें, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, शेख का डर ना रखें, शेख की कोई औकात नहीं होती, हर वक्त शेख साथ नहीं लगा होना, शेख गैब का हाल जानता है, हर वक्त अल्लाह साथ है हमारे, अलम या अलम भी अल्लाह यारा, ऐ मेरे बंदे क्या तू नहीं जानता, तू हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ, अलम या अलम भी अल्लाह यारा, ऐ मेरे बंदे तू क्या नहीं जानता मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया होगा माँ को आई ना माँ कर तुम जहां भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब आदमी देखे भाई कि मेरे क्या मामला आते हैं, घर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या धोखेबाजी चल रही है, क्या मुनाफा चल रही है, दफ्तर में मेरे जो लोग हैं मेरे अंदर में जो काम कर रहे हैं उनके साथ कि मैं जुल्म ज्यादती तो नहीं करता, घर वालों के साथ तो नहीं कर रहा, मुनाफिकत के साथ तो नहीं चल रहा, कहीं मैं अदल इंसाफ के खिलाफ तो नहीं चल रहा, मैं किस तरह से मेरा है सब, मेरे घर वाले मेरे आसपास के लोग हल्का बाप के लोग मुझसे खुश हैं या राजी हैं। आदमी के लिए उतना ही काफी है, लोगों की अक्सरियत उसके बारे में क्या राय रखती है वही वोटिंग से पता चल जाएगा वो क्या है। और खास तौर पर बीवी होती है, बीवी होती है जो सारा पोल पट्टी खोलती है। बाहर की दुनिया में आदमी अपने आप को छुपा सकता है, नहीं पता लोगों को, 20-20 साल लोग 20-20 साल हो जाते हैं लोगों को छुपे में रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता, बहुत नेक नाम और शरीफ बाखलाक और बहुत लोग उनके आशिक होते हैं, बहुत शानदार आदमी है, कभी बीवी से पूछो पता चलेगा, इंसानियत के नाम पे कलंक नजर आएंगे वो, क्योंकि बीवी के आगे आदमी नहीं छुपता। एक्टिंग ड्रामेबाजी धोखेबाजी बाहर की दुनिया में हो जाती है, घर में नहीं होती, घर में नहीं होगी, तो एहतियात करनी चाहिए इन चीजों से। और ये सारी चीजें उनकी तकब्बुर के मर्ज से होती है, तकब्बुर के मर्ज से, जब इंसान में तकब्बुर होता है अपनी बड़ाई होती है, तो आदमी ये ना देखे यार कि सब मैं फोन करूं तो शेख को देख नहीं रहा, भाई तो शेख क्या बेचता है, अल्लाह तो साथ है, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह से डरना चाहिए, शेख से ना डरे आदमी, शेख कोई गैब का इल्म थोड़ी रखता है। अल्लाह, इसी तरह जन्नत और जहन्नम में मुनाज़रा हुआ, जहन्नम ने कहा मैं तरजीह दी गई हूँ मुतकब्बिर और जाबिर वालिम लोगों के साथ। दोबारा बेहदी शरीफ आई, यानी मुनाज़रा मुकाबला हुआ, बहस हुई जन्नत और जहन्नम में, तो जहन्नम ने कहा मैं तरजीह दी गई हूँ यानी कफरत के साथ जो मेरे अंदर लोग होंगे वालिम मुतकब्बिर, वालिम जाबिर मुतकब्बिर लोग होंगे, मैं उनके साथ तरजीह दी गई हूँ। और जन्नत ने कहा मैं तरजीह दी गई हूं कमजोर गिरे पड़े और भोले भाले लोगों के साथ। अल्लाह जल्ला जलाला बस कहां तक बयान करें, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और हम सबको आज ही इनायत का पैकर बना दे, और अल्लाह पाक हमारे अंदर से जो भी जाही बाही जो हम राजे रजीला सबसे हम सबको निजात दे दे, अपना खौफ हमारे दिलों पर اس سے پہلے کوئی اللہ کی کوئی پکڑ یا سختی ہے اس سے پہلے پہلے ڈال کے اپنا خوف اللہ ہمارے دلوں میں ہمیں پاک صاف کر دے تمام گناہوں سے, اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما, گناہوں کو پالنے سے بچا لے, ظلم سے بچا لے, تکبر سے بچا لے, ناجائز غصے سے بچا لے, ناجائز شہوت پرستی سے, تمام امراض سے اللہ پاک ہم سب کو بچا لے, اپنا خوف عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا رب کریم یا رحم الرحیم, یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اللہ کہنے سننے میں وہ غلطی کمی بیشی ہوگی تو شان رحمت سے بخش دے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے, یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, ہم سب کی قابل مغفرت فرما, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, یا اللہ ہم سب کو تکبر کے مرض سے نجات دے دے, تمام جاہی اور باہی امراض سے نجات دے دے, یا اللہ ہم سب کو فنائیت کا آج انتصاری کا فیکر بنا دے, یا اللہ ظلم سے ہم سب کو باز رکھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنی جان پر بھی ظلم کرنے سے بچا لے, لوگوں کی جان پر بھی ظلم کرنے سے بچا لے, یا اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معافی کا کرم نوازی کا معاملہ فرما, مانا ہم خطہ کار ہیں گناہ گار ہیں, جیسے بھی اللہ تیرے گناہ گار بندے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما, یا اللہ ہم تو اپنے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں اور اپنے احباب کی لیے بھی, یا اللہ ہم سب کی اصلاح پیار محبت سے کرا دے, پیار محبت سے اصلاح فرما دے, یا اللہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں یا اپنے احباب کی لیے پسند کرتا ہوں, یا اللہ تو سختی کے ساتھ بھی اصلاح کرنے پہ قادر ہے, تو چاہے تو محبت نرمی سے بھی اصلاح کرنے میں قادر ہے, یا اللہ بس پیار محبت سے نرمی سے ہمارے قلوب کو تمام امراض رذیلہ سے پاک کر دے, بغیر کسی سختی کے, بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی اذیت کے, اللہ پاک شان رحمت سے اللہ اپنے پیاروں کی برکت سے یا اللہ گناہوں کا احساس ہمارے دلوں میں ڈال دے, یا اللہ بے اسی غفلت سے اللہ پاک نجات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے, یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے, سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے, اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے, دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے, یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ عافیت دارین نصیب فرما, یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما, جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں اللہ ان سب کو لال رسے غنی فرما, جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما, یا اللہ جتنے بھی بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, یا اللہ تمام امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاکستان کی حفاظت فرما, یا اللہ یہودیوں کو اور ان کے مددگاروں کو اسلام دشمنوں کو اللہ جلد از جلد تباہ و برباد کر دے, صفحہ ہستی سے مٹا دے, عبرت کا نشان بنا دے, یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرومین کی, کل مومنین و مومنات کی, کل جنات کی اور میرے ساس سسر کی, سب کی کامل مغفرت فرما, سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.